दिन भर तारीख 4 सितंबर दिन शुक्रवार में हूँ विनीत खरे। यूरोप में शरणार्थी संकट गहराया, संयुक्त राष्ट्र ने कहा यूरोपीय यूनियन को 2,00,000 शरणार्थियों को आने देना चाहिए। आरएसएस और सरकार के मंत्रियों के बीच 3 दिन चली बातचीत खत्म, क्या आरएसएस सरकार को रिमोट कंट्रोल से चला रही है? विदेशों से फंड हासिल करने का ग्रीन पीस का लाइसेंस रद्द और 1965 युद्ध पर हमारी विशेष सीरीज की चौथी कड़ी में आज सुनिएगा हाजी पीर की लड़ाई की कहानी।
We were in hand-to-hand fight with the enemy. I have benefited 2 people in that battle. If I had not benefited them, they would have benefited me. They would have killed me. I killed.
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप सोनी से। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन के देशों को प्रवासी संकट के समाधान के लिए नजरिया बदलकर साझा रणनीति के तहत 2,00,000 शरणार्थियों को जगह देनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी का कहना है कि प्रवासियों का संकट खत्म करने के लिए यूरोपीय यूनियन को पूरी ताकत से काम करने की जरूरत है। शरणार्थियों को पनाह देने के मुद्दे पर यूरोपीय यूनियन के नेताओं में मतभेद रहे हैं। प्रवासियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन IOM ने कहा है कि लीबिया के तट पर एक बड़ी नौका डूबने के बाद लगभग 40 प्रवासी लापता हो गए हैं। संगठन के एक प्रवक्ता का कहना है कि नाव में सवार कुछ प्रवासियों को इटली की नौसेना ने बचा लिया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने न लड़ने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया है। अटलांटा में विदेश नीति पर अपने भाषण के दौरान जो बाइडन ने कहा,
I will be straightforward with you. The most relevant factor in my decision.
मैं आपसे सीधी बात कहूंगा, मेरा फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि मेरे परिवार और मुझमें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए भावनात्मक ऊर्जा है या नहीं। मैं खुद को पूरी तरह समर्पित किए बिना राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का फैसला नहीं कर सकता। अमरीकी उपराष्ट्रपति जो बाइडन के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि यमन में तैनात उसके 22 सैनिक मारे गए हैं। ये सैनिक उस अरब गठबंधन सेना में शामिल थे जो यमन में शिया हौथी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। संयुक्त अरब अमीरात के मीडिया के मुताबिक ये सैनिक दुर्घटनावश हुए सिलसिलेवार धमाकों में मारे गए, लेकिन हौथी विद्रोहियों का दावा है कि ये धमाके दुर्घटनावश नहीं हुए थे बल्कि उन्होंने किए थे। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के जिहादी लड़ाकों ने प्राचीन शहर पलमायरा में पुरातात्विक महत्व की 3 इमारतों को धमाके से उड़ा दिया है। इनमें 103 ईस्वी में बनी एक इमारत भी शामिल है। पलमायरा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल जगह है, जहां पहले सरकारी सैनिकों का नियंत्रण था, लेकिन इस साल मई में इस्लामिक स्टेट ने पलमायरा पर नियंत्रण कर लिया था। भारत के दक्षिणी राज्य केरल के मुस्लिम विद्वान MM बशीर ने दावा किया है कि उन्हें हिंदू दक्षिणपंथी समूहों से धमकियां मिली हैं और अखबार में स्तंभ न लिखने के लिए मजबूर किया गया है। पूर्व प्रोफेसर बशीर ने संस्कृत महाकाव्य रामायण में वर्णित हिंदुओं के भगवान राम पर एक के बाद एक कई आलेख लिखे थे। प्रोफेसर बशीर के मुताबिक हिंदू दक्षिणपंथी समूहों ने उन्हें धमकी दी है कि एक मुसलमान होने की वजह से उन्हें ऐसा कुछ करने का अधिकार नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन के नायक रहे आर्क बिशप डेस्मंड टूटू को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उन्हें इलाज के लिए 2 हफ्ते पहले भर्ती कराया गया था। BBC समाचार।
BBC हिंदी सेवा में दिन भर आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं विनीत खरे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यूरोपीय देशों को करीब 2,00,000 शरणार्थियों को अंदर आने देना चाहिए। उधर यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हजारों शरणार्थी हंगरी में जमा हुए हैं और वहां भारी अव्यवस्था का माहौल है। सर्बिया की सीमा के निकट स्थित एक शिविर में रह रहे 200 लोग बाहर निकल आए हैं और पुलिस उनका पीछा कर रही है। इस बीच पुलिस और बिस्के स्टेशन पर फंसी एक ट्रेन में मौजूद यात्रियों के बीच झड़पें जारी हैं। ट्रेन में फंसे लोग वापस कैंपों में जाने को तैयार नहीं हैं। बुडापेस्ट के एक स्टेशन में शरणार्थियों के एक हुजूम का कहना है कि वो ऑस्ट्रिया तक चल कर जाएंगे। इस बीच हंगरी की संसद ने सीमा पर लोगों के आने जाने पर लगे प्रतिबंधों को कड़ा करने के लिए नए कानून पास किए हैं। BBC संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए रोहित जोशी से।
यूरोप में शरण तलाश रहे शरणार्थियों को लेकर हंगरी में स्थिति अराजक हो गई है। बिस्के स्टेशन में खड़ी एक ट्रेन में पुलिस और यात्रियों के बीच तनाव बढ़ गया है। उधर एक ट्रेन में भरे हुए सैकड़ों प्रवासियों और शरणार्थियों ने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से पश्चिम की ओर तकरीबन 30 किलोमीटर दूर रात बिताई है। बृहस्पतिवार को बुडापेस्ट के अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन को जब शरणार्थियों के लिए खोल दिया गया तो उन्हें उम्मीद थी कि ट्रेन उन्हें बुडापेस्ट से ऑस्ट्रिया की सीमा तक ले जाएगी, जहाँ से वे ऑस्ट्रिया में प्रवेश कर सकेंगे। लेकिन अधिकारी इन प्रवासियों को एक ट्रांजिट कैंप में ले जाना चाह रहे हैं। ट्रेन में बैठे ये यात्री लगातार नारे लगाकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें कैंप में न रखा जाए, उन्हें आजाद रखा जाए। ट्रेन में बैठे इन शरणार्थियों ने ये कहना शुरू किया है कि वे पैदल ही ऑस्ट्रिया की ओर जाएंगे। एक सहायता संगठन के लिए काम कर रही मार्ता परदावी ने कहा है कि उन्हें इस समस्या का कोई जल्द समाधान नजर नहीं आ रहा है। लगभग 500 लोगों ने ट्रेन में रात गुजारी है और वे ट्रेन से उतरने और रिसेप्शन सेंटर में जाने को तैयार नहीं है। उधर पुलिस का कोई दखल नहीं है और इसे लेकर हम डरे हुए हैं। अगर तनाव बढ़ जाता है तो पुलिस को कोई कार्रवाई करनी होगी। बिस्के और हंगरी में कई जगह यही हालात आज भी जारी रहेंगे। शरणार्थियों को ये जानकारी नहीं दी जा रही है कि उनके साथ अगले कुछ घंटों या अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है। ये थे एक सहायता संगठन में काम कर रही इस मार्ता परदावी के शब्द। दूसरी तरफ हंगरी की संसद ने सीमा सुरक्षा को और अधिक कड़ा करने के लिए नए कानूनों को पारित किया है। इसमें पुलिस की शक्ति और गैर कानूनी तौर पर देश में प्रवेश पर दंड को और अधिक बढ़ाया गया है। उधर ब्रिटेन ने कहा है कि वो सीरिया की सीमा पर बने शरणार्थी शिविरों से कुछ हजार शरणार्थियों को शरण देने को तैयार है। लेकिन इसके साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने ये भी कहा है कि इस समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए और अधिक काम किए जाने की जरूरत है। हमने पहले ही 5,000 सीरियाइयों को स्वीकार किया है और उनके लिए हमने विशेष शरणार्थी योजना भी लागू की है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हम कुछ हजार लोगों को इन योजनाओं के तहत और स्वीकार करेंगे और हम इन्हें विचाराधीन रखेंगे। इस संकट की व्यापकता और लोगों पर इसके असर को देखते हुए मैं ये घोषणा करता हूँ कि हम इसके लिए और भी अधिक प्रयास करेंगे और हजारों और शरणार्थियों को ब्रिटेन में शरण देंगे। ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के शब्द। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ की शरणार्थी संस्था ने यूरोपीय देशों से सीरिया, इराक और अफगानिस्तान से मजबूरी में यूरोप की ओर आ रहे शरणार्थियों को शरण देने की अपील की है। UNHCR ने कहा है कि संघर्ष वाली जगहों से भागकर आ रहे इन लोगों को यूरोप में वैध रूप से आने के और अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है। उधर यूरोपीय कमीशन के सदस्य ग्रीक के कोस द्वीप का दौरा कर रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में हर रोज प्रवासी पहुंच रहे हैं।
ये थे रोहित जोशी।
BBC इंडिया बोल।
शीना बोरा हत्याकांड मामले को जिस तरह मीडिया के एक हिस्से में पेश किया जा रहा है, उसकी खासी आलोचना हो रही है। क्या मीडिया किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त है? मीडिया ट्रायल की परंपरा कितनी सही है? यही है शनिवार 5 सितंबर के इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रात 9:30 बजे से 10 बजे के बीच मुफ्त फोन करें इन नंबरों पर 1811 7000 और 1802 7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
और श्रोताओं को हम एक बार फिर से याद दिला दें, कल का इंडिया बोल 7:30 से 8 के बीच में नहीं है, 9:30 से 10 के बीच में है। आरएसएस और सरकार के मंत्रियों के बीच जारी मंत्रणा आज तीसरे दिन खत्म हो गई। माना जा रहा है कि इस बातचीत में सरकार के मंत्रियों ने आरएसएस को काम का हिसाब दिया। उधर आरएसएस ने कांग्रेस के उन आरोपों को गलत बताया है कि आरएसएस केंद्र सरकार को रिमोट कंट्रोल से चला रहा है, लेकिन कांग्रेस के इन आरोपों में कितना दम है, यही सवाल रखा मैंने बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद के सामने।
हमें याद है जब 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस समय भी यही इल्ज़ाम लगाया जाता था कि रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के हाथ में है और ये पपेट प्रधानमंत्री हैं। तो अगर आरएसएस ने इस तरह का जो सिलसिला शुरू किया है और उनका ये कहना है कि आगे भी ये जारी रहेगा, तो इस बार जो आलोचना हो रही है, अगली बार अगर इन्होंने इस तरह की मीटिंग की तो लोगों को यकीन होने लगेगा कि वाकई मोदी सरकार की जो पकड़ है वो आरएसएस उसमें काफ़ी कामयाब रही है। और आरएसएस के लिए सही नहीं होगा क्योंकि आरएसएस ख़ुद को सोशल ऑर्गेनाइजेशन बताती है। ये संघ परिवार का सबसे प्रमुख संगठन है। इसका काम सियासी पार्टी को चलाना नहीं या हुकूमत को चलाना नहीं है, सरकार को चलाना नहीं है। इस बार जो 3 दिन की बैठक हुई है उससे ऐसा लग रहा है कि सत्ता के बिल्कुल करीब संघ आ गया है, और संघ के इमेज के लिए, उसकी छवि के लिए सही नहीं है, क्योंकि जब आप सत्ता से करीब आएंगे तो आपको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ेगा, और जब आपको लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे तो मोरल हाई ग्राउंड जो आप लेते थे पहले कि हम सत्ता के से दूर हैं, वो आप नहीं ले पाएंगे। और सत्ता के करीब आएंगे तो बहुत सारी जो है चीज़ों को आपको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना होगा जनता को। एक तो ये है, दूसरी बात ये है कि जो भी मंत्री वहाँ ब्रीफ करने गए RSS और संघ परिवार के लोगों को, वो उनकी जवाबदेही जनता के प्रति है, इन संगठनों के प्रति नहीं है। RSS का ये कहना कि हम भी जनता हैं और हम भी एक संगठन, जैसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके मंत्री बोलता है उसी तरह से हमारी आंखें बोल रहे हैं, ये बात सही नहीं है। आप साफ नज़र आ रहा था कि 3 दिनों में पूरी तैयारी के साथ सभी मंत्री गए थे, और वही मंत्री गए थे जिनका RSS का बैकग्राउंड रहा है या RSS के मेंबर रहे हैं, सब लोग नहीं गए थे। उनका इस तरह से तैयार होके जाना और सारी तफसील बताना, ये, और जो RSS के प्रवक्ता की जो बातें हमने सुनी उससे साफ लग रहा था कि वो इम्तहान ले रहे थे, उन्होंने इम्तहान लिया है और इम्तहान में उनको पास किया गया है, पूरी तरह से एक्सेलेंट मार्क्स नहीं दिया गया है, 10 अगर मार्क्स हैं तो उसमें 6 उन्होंने दिया और कहा कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी जारी है, ये दिशा सही है, नियत साफ है, लेकिन काम होना बाकी।
ये कहना कितना सही होगा, क्योंकि RSS की मदद के बिना ये कहा जाता है कि NDA या नरेंद्र मोदी सरकार नहीं बनती, RSS का एक महत्वपूर्ण योगदान था, लोग जो RSS से जुड़े हुए हैं देश के कोने कोने में, उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो अगर RSS जानना चाहता है कि भाई सरकार की दिशा कैसी है, आपने जो वायदे किए थे लोगों से वो पूरे हुए कि नहीं, तो ये जो आलोचना है ये कितनी सही है। मतलब आप अगर एक परिवार का सदस्य हैं जैसा कि वो दावा करते हैं, तो आप एक दूसरे से जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोग्रेस कितनी है।
इंटरनली ये जो मैकेनिज्म है उसके हिसाब से तो गलत नहीं है, क्योंकि RSS का ही हिस्सा है BJP, और आपने जैसा कहा कि RSS के कार्यकर्ताओं ने चुनाव में मदद की, और एक साहब ने मुझे यहाँ तक बताया कि 90 सीटें जो आई हैं RSS को, उसमें RSS का पूरा योगदान है, या तो RSS का वो मेंबर है जो जीतने वाला कैंडिडेट है, या RSS की मदद से वो जीता है। बहुमत पहली बार BJP को पूरी तरह से मिला है इस इलेक्शन में, और उसमें 90 सीटें अगर RSS की वजह से आई हैं तो वाकई इनका से होगा, और इसीलिए इनका आक्रामक रुख थोड़ा देखने को मिला है, और ये भी कि ये हमारी ही सरकार है पूरी तरह से, और इनके कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में काम किया है, तो जाहिर है ये हिसाब किताब तो लेंगे, और इनका अपना एक आइडिया है कि देश को, देश की इकोनॉमी को किस मॉडल में ढालना चाहिए, एजुकेशन में किस तरह का मॉडल होना चाहिए। तो सरकार अगर उस तरह से काम नहीं करेगी तो ऑब्वियसली ये उसका इम्तहान लेंगे, लेकिन संवैधानिक रूप से या डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस तरह से पार्टी बन जाए कि सरकार की खिंचाई करें या इम्तहान लें उसका, या उसका लेखा जोखा लें, वो तो सही नहीं होगा। और यही लोग कह भी रहे हैं कि भाई आप जो पार्लियामेंटेरियन चुन कर आया है, जो मंत्री बना है, उसकी जवाबदेही जनता के प्रति है जिसने वोट डाला है उसको, ये नहीं कि आप किसी संस्था के सामने जाएँ और झुक के बताएँ कि आप साहब हमने ये काम किया अभी तक।
ये थे ज़ुबैर अहमद। पर्यावरण मामलों पर काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्रीन पीस ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार उसकी आवाज़ को दबा रही है। रिपोर्टों के मुताबिक सरकार ने भारत में विदेशों से फंड हासिल करने का ग्रीन पीस का लाइसेंस रद्द कर दिया है। भारत सरकार का कहना है कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया है क्योंकि ग्रीन पीस ने विदेशों से फंड लेने के नियमों का उल्लंघन किया है। क्या इसे भारत में ग्रीन पीस के अंत की शुरुआत माना जाए? यही पूछा मैंने ग्रीन पीस की प्रिया पिल्लई से।
आप देखेंगे तो अप्रैल से हमारे फॉरेन फंडिंग टोटली हमारा रुका हुआ है और हम जो है सर्वाइव कर रहे सिर्फ इंडियन मनी पे, और ये हमने साफ साफ कई बार ये बोला हुआ है, मोर देन 70% जो हमारा फंड है वो इंडियन है। सरकार हाइप क्रिएट कर रही है इसके बारे में, लेकिन एक्चुअली इट डजंट रियली इम्पैक्ट। इनफैक्ट अप्रैल के बाद अगर आप देखेंगे तो हमने कई कैंपेन्स भी शुरू किए हैं, नए कैंपेन्स लाइक एयर पोल्यूशन के खिलाफ जो हम कैंपेन कर रहे हैं, और उसी तरह से सोलर स्ट्रीट लाइट्स, रिन्यूएबल एनर्जी करके जो हमारा पॉजिटिव कैंपेन है, वो सारा जो है जून के बाद ही शुरू हुआ है। तो ये सरकार का मानना है, लेकिन एक्चुअली आप देखेंगे तो हमारा वर्क उस तरह से इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा सपोर्ट बेस जो है वो डोमेस्टिक सपोर्टर्स हैं, जो 77,000 से भी ज्यादा डोमेस्टिक सपोर्टर्स हैं, वही हमारा सपोर्ट बेस।
और आपने ये भी कहा है कि आप बॉलीवुड पोस्टर बनाएंगे अपने इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए, एग्जैक्टली आप क्या करना चाह रहे हैं?
इट्स जस्ट लाइक अ स्पूफ ऑन द गवर्नमेंट बेसिकली, that's all, it's just like a
मतलब किसी तरह से मजाक उड़ाना। आपने स्वदेश exactly. फिल्म का नाम लिया है, जाने भी दो यारो, तो मतलब ये बॉलीवुड पोस्टर में फिर आप क्या कैसे मैसेज पहुंचाएंगे?
देखिए हम इसको बस यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह में टू काइंड ऑफ रीच आउट एंड बेसिकली टू गिव आउट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट यू नो कि ऐसा नहीं है जैसे सरकार सोच रही है, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे तो मतलब इट डजंट रियली मैटर यू नो ये जो क्रैकडाउन है, एंड ये जो क्रैकडाउन जो है बहुत एक पॉलिटिकल लेवल में बहुत ज्यादा सीरियस भी है। और आप देखेंगे तो ये क्रैकडाउन सिर्फ ग्रीन पीस पे नहीं है, ये लार्जर सिविल सोसाइटी पे क्रैकडाउन है। FTII के स्टूडेंट्स के ऊपर भी यही मतलब सरकार की जो मार है वो पड़ रही है। मीडिया को भी नहीं स्पेयर किया है सरकार ने। आप अगर देखेंगे तो याकूब मेमन के हैंगिंग को लेकर के 4 मीडिया हाउसेस को नोटिस जारी किया है सरकार ने।
आखिरी सवाल आपसे, आपने ये जो मेरी अभी तक जो बातचीत हुई है 2-3 बार आप कह चुके हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि सरकार क्या कदम उठाए, आपके देश के भीतर ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको फंडिंग कर रहे हैं, तो फिर ये फिर सरकार की आलोचना आखिर क्यों हो?
ये अलग बात है कि सरकार हमको उस तरह से नहीं शटडाउन कर सकती FCRA कैंसिल करके, दैट इज द प्रैक्टिकल इश्यू जो मैं बता रही हूँ। लेकिन सरकार का कोई हक नहीं बनता कि इलीगली और आर्बिटरली इस तरह से क्रैकडाउन करे ऑर्गेनाइजेशन पे। और ग्रीन पीस इज वेल विद इन इट्स राइट्स टू वर्क, है ना, इस राज्य में काम करने के लिए का अधिकार है ग्रीन पीस को, और ग्रीन पीस जैसे अन्य संस्थाओं को भी अधिकार है। जो आप देखेंगे कि सरकार का जो पूरा वो चाहे वो बैन का पॉलिटिक्स हो या कुछ भी मुद्दा हो, उसको लेकर के सरकार का जो रवैया है वो उसका हम विरोध करते हैं। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे अगर हम लॉ अबाइडिंग हैं और हम जो है रजिस्टर्ड हमारे पास FCRA है, उसको क्वेश्चन अननेसेसरली क्वेश्चन करना और इलीगली और आर्बिट्रली कैंसिल करने का अधिकार सरकार को नहीं है, और उसको हम चैलेंज कर रहे हैं और करते रहेंगे।
ये थी ग्रीन पीस की प्रिया पिल्लई। हाजी पीर की लड़ाई 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की औपचारिक घोषणा से कुछ दिन पहले लड़ी गई थी। भारतीय सैनिकों ने कड़े संघर्ष के बाद 8,652 फीट ऊंचे हाजी पीर पर कब्जा किया था, ताकि कश्मीर में घुसपैठ करने के एक बड़े रास्ते को बंद किया जा सके। 1965 युद्ध की हमारी विशेष सीरीज की चौथी कड़ी में आज रेहान फजल सुना रहे हैं हाजी पीर की लड़ाई की कहानी।
उनके पास खाने के लिए सीले हुए शकरपारे और बिस्कुट थे, तेज बारिश हो रही थी और मेजर रंजीत सिंह दयाल एक पैरा के सैनिकों को लीड करते हुए हैदराबाद नाले की तरफ बढ़ रहे थे। उनका लक्ष्य था हाजी पीर पास, जिसे भारत और पाकिस्तान दोनों एक अभेद्य लक्ष्य मानते थे। ये पास ऐसी जगह पर था जहां से इसका बहुत कम लोगों के साथ कहीं तगड़े प्रतिद्वंदी के खिलाफ बचाव किया जा सकता था। हाजी पीर पास की ओर चढ़ाई रपटीली, गहरी और लंबी थी। बारिश के तेज थपेड़ों और घोर अंधेरे के बावजूद उन्हें सुबह तक चोटी पर पहुंचना था, वरना दिन की रोशनी में चोटी पर तैनात पाकिस्तानी सैनिक बहुत आसानी से उन्हें अपना निशाना बना सकते थे। उनका पहला लक्ष्य था संघ के ढलानों पर कब्जा करना। इस अभियान में भाग लेने वाले ब्रिगेडियर अरविंदर सिंह याद करते हैं।
पहाड़ों की जो लड़ाई होती है, इसमें लड़ाई हमेशा चोटियों पे होती है, पास में नहीं होती। उसको अगर हम कैप्चर भी कर लें, ले भी लें, तो जब तक वो हाइट्स हमारे पास नहीं है, हम उसको डिफेंड नहीं कर सकते। तो इसलिए उनकी भी शायद प्लानिंग ऐसी थी, या वी प्रीएम्प्टेड देम। तो इसके लिए एक प्लान बनाया गया, एक पिंसर मूवमेंट। पिंसर का मतलब दोनों साइडों से एक चीज के ऊपर दबोचना, उसको पकड़ना, जिसमें हमारा काम था एक साइड से, आई विल से फॉर पर्पसेस ऑफ डिस्कशन, वेस्टर्न साइड से जितनी हाइट्स थी उनको कैप्चर करके उधर पहुंचना था, और ईस्टर्न साइड से एक और बटालियन पंजाब रेजिमेंट की थी, उन्होंने कैप्चर करके उधर पहुंचना था। पहली रात को हमारा अटैक सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन दूसरे दिन जब लड़ाई की गई तो हमने एक बड़ा अहम इलाका कैप्चर किया, उसका नाम संख के नाम पे हम उसको बुलाते हैं। उसके बाद मैंने दो और उनकी पोजीशंस कैप्चर की, और उसके बाद हमारा काम वहाँ पे ख़त्म था। हाजी पीर का अटैक किसी और बटालियन ने करना था, लेकिन वो तब शुरू कर सकते थे जब मैंने बताया कि ईस्टर्न साइड से जो पंजाब रेजिमेंट थी वो भी अपनी हाइट्स अगर कैप्चर कर लें तो उसके बाद उन्होंने जाना था। उन्होंने कैप्चर तो की लेकिन वो तकरीबन दो दिन लेट हो गए उसमें, तो हमने अपनी वक्त के मुताबिक कैप्चर कर ली थी। तो ये टास्क ये ब्रिगेड ने हमें नहीं दिया था, ये हमने ब्रिगेड से रिक्वेस्ट करके मांगा, हम हाजी पीर को देख सकते हैं, हमें इजाज़त दी जाए टू कैप्चर इट।
उनके सामने 1500 फीट की सीधी चढ़ाई थी। अनुमति मिलने के बाद दयाल के सैनिकों ने ऊपर चढ़ना शुरू किया।
सब मौसम तो बहुत ख़राब था, लेकिन फौज में यह कहते हैं कि जितना मौसम ख़राब हो उतना ही अटैकर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि डिफेंडर जो है वो थोड़ा सा सुस्त हो जाता है। कश्मीर में जो ज़मीन है बड़ी दलदली हो जाती है, चलना मुश्किल हो जाता है। कैप्चर करने के लिए हमें तकरीबन 1500 फुट हाइट ऊपर चढ़ना था और हाइट का एंगल कोई तकरीबन 55 टू 60 डिग्रीज का था। सो वॉकिंग स्ट्रेट वॉज नॉट एन ऑप्शन। लड़ाई का जो तरीका होता है, माइंस लगाते हैं, वायर लगाते हैं, वो अपनी डिफेंस पोजिशन के आगे होती हैं, तो उनको क्रॉस करने में कैजुअल्टीज़ भी होती हैं, टाइम भी लगता है। तो पहली रात को जब तक हम ऊपर पहुंच सके पोजीशन के पास तो सुबह हो चुकी थी। दे कुड सी अस एंड दे कुड शूट एट अस, तो हमें वो अटैक इस वजह से रोकना पड़ा क्योंकि हमारी कैजुअल्टीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती थी। सो दूसरे दिन हमने आर्टिलरी की सपोर्ट से काफ़ी वहाँ पे गोलाबारी की और सेकेंड राइट को हम जब गए तो उधर हमारी कैजुअल्टीज़ मिनिमल थी, वो हमने उसको फिर कैप्चर किया। पहाड़ों में हम डिस्टेंस फासले से नहीं नापते, पहाड़ों में हम डिस्टेंस टाइम से नापते हैं कि मैं कितनी देर में उधर पहुंच जाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया संघ की पोस्ट 1500 फुट ऊंची, फासला तो बड़ी मुश्किल से आधा किलोमीटर था। सारी रात हम चलते रहे तब जाके सुबह पहुंचे। मैंने आपको बताया मौसम तो ख़राब था ही, और ये नाले अपने प्लेन्स की तरह जैसे दिल्ली के पास जमुना ऐसे नहीं होते कि आप निकल जाओ आराम से, वेरी फास्ट फ्लोइंग करंट, यू कैन बी वॉश्ड अवे। पहले ऊपर से नीचे गए कोई तकरीबन 10,000 फुट से, फिर नीचे से ऊपर चढ़े। हाजी पीर की ऊंचाई कोई 8,600 फुट है तो उसके ऊपर चढ़े, तो ये तकरीबन आप समझ लीजिए कि 14-15 घंटे उनको लगे उधर पहुंचने।
रास्ते में उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी जिसमें कुछ आवाजें आ रही थी। जब भारतीय सैनिकों ने उसका दरवाजा खटखटाया तो उसमें से 11 पाकिस्तानी सैनिक निकले। उस अभियान दल के एक और सदस्य थे कर्नल जिम राव।
भाग के एक बहक के अंदर वो छुप गए, तो हमने बहक को सराउंड करके बहक द शेपर्ड राट बहक को सराउंड करके उनको बाहर निकाला। POW के बंदोबस्त हमारे पास नहीं था, सो वी यूज देम एज पोर्टर्स। रेजिस्ट बहुत किया है लेकिन दे वर काउट डाउन, बिकॉज देखिए कोई लड़ाई में हार जाता है और लड़ाई से पीछे हटना पड़ता है और अपने जान बचाने के लिए उसको नीचे जाना पड़ता है, और बडोरी से नीचे आप आएंगे तकरीबन 600 फुट का अंदाज़ा है, और आपने जम्मू एंड कश्मीर देखा होगा कि वहाँ पीर पंजाल रेंज में ऐसे रेंज हैं जहाँ की चढ़ना उतरना मुश्किल है सीधा।
DR मनकेकर ने अपनी किताब 22 फेटफुल डेज में लिखा है,
दयाल और उनके सैनिक तड़के 4 बजे हाजी पीर जाने वाले रास्ते पर पहुंच गए थे। उन्होंने अपने सैनिकों को 2 घंटे का विश्राम दिया, उन्होंने फिर ऊपर चढ़ना शुरू किया। जब वो सुबह 8 बजे चोटी पर पहुंचे तब तक पाकिस्तानी सैनिक भारी गोला बारूद छोड़कर वहां से भाग चुके थे। अपने पीछे वो इतना खाना छोड़ गए जिससे 1,000 लोगों को 1 महीने तक खाना खिलाया जा सकता था।
दिलचस्प बात यह है कि चढ़ाई के दौरान भारतीय सैनिकों को कोई रसद नहीं मिल रही थी क्योंकि सारा एक्शन बहुत तेजी से हो रहा था।
4 दिन जन दयाल को रेशन नहीं मिला, हमें भी रेशन नहीं मिला, क्योंकि इतना जल्दी एक्शन हुआ कि आर लॉजिस्टिक सेटअप कुड नॉट मेक अप विद अस। वहां पर आपने देखा होगा बकरवाल बहुत होते हैं, तो हमने एक भेड़ को पकड़ा, बैनेट से हमने उसको सफाई किया और लकड़ी इकट्ठा करके हमने कुरमा करी बना के खाया। उसके बाद अगले दिन हमको हेलीकॉप्टर से उन्हें फूड पैकेट ड्रॉप किया, लेकिन भूख बहुत लगी थी सच बताऊं आपको।
चोटी पर नियंत्रण हो जाने के बाद मेजर दयाल ने अरविंदर सिंह को पाकिस्तानी सैनिकों के ठिकानों का जायजा लेने के लिए पास की पहाड़ी में भेजा। मेजर अरविंदर सिंह ने वहां जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन निकल गई। वहां पर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक थे जो भारतीय सैनिकों पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। अरविंदर ने उसी समय उन पर हमला बोलने का फैसला किया, हालांकि उस समय उनके पास सिर्फ 65 सैनिक थे।
जो मैंने उस वक्त काम किया उसको आप मेरा जुनून कह लो, मेरी बेवकूफ़ी समझ लो क्योंकि आई वाज यंग मैन, मेरी ओडेसिटी कह लो। मैंने देखा कि उधर काफ़ी लोग हैं उस हाइट के ऊपर। नॉर्मल रिएक्शन When you don't have strength, you will come back, you will pull back. I said, I will attack. We attacked, and in that attack, out of these almost 65 to 70 people that I had, the leading platoon, which was half the strength, we were in hand-to-hand fight with the enemy. I have benefited two people in that battle. If I had not benefited them, they would have benefited me, they would have killed me. I killed them. And since I was going ahead, the leading section commander, he almost fought with me. He says, how dare you go ahead of me? It is my job to go ahead, not yours. He barely took two steps ahead of me, along with another man. Something hit us. Was it a grenade? Was it what? I do not remember till today. Both of them died, and I fell down. I lost a part of my leg. When I looked at the thing, it was 8 inches or 9 inches long, and my complete calf was blown off. I could only see my bone. I tried to get up, but I fell down. And in that hand-to-hand battle, I lost 7 of my men, and the remainder, we were about 30. Everyone was wounded. Not a single man could stand up. But we had captured the place.
2 घंटे बाद वहां मेजर रंजीत सिंह दयाल पहुंचे। वहां उन्होंने अरविंदर सिंह को बुरी तरह से घायल अवस्था में गिरे हुए पाया।
He came there after about 2 hours or 2.5 hours. Saw me lying there, sat with me, and while he was sitting with me, he got a burst on his right side. He was also carrying a Sten gun. The housing got a bullet, so the magazine fell apart, and 2-3 bullets went through his dress that he was wearing, smock Tennyson. उससे पहले एक और बात है। एक यंग लड़का, उसका नाम अभी भी मुझे याद है, हीरा लाल। लड़ाई का वक्त है, हैंड टू हैंड फाइटिंग चल रही है, वो भी गोलियां चला रहे हैं, हम भी चला रहे हैं, नजदीक हैं तो बेनेट कर रहे हैं एक दूसरे को। उस वक्त ये नहीं होता कि ये साइड उनकी है, ये साइड हमारी है। आप सब एक में मिक्स हुए हुए हैं, किस्म के एक दूसरे के पीछे लगे हुए मारने के लिए कि उसको मारेंगे तब मैं जगह ले सकता हूँ। इस बच्चे को एक बर्स्ट लगा एक साइड से और उसकी गट्स आंतड़ियां बाहर आके गिरी हुई हैं। उस आदमी का काम था राइफल के साथ ग्रेनेड से मारना। मैं उसके पास थोड़ा सा रुका तो मुझे वो बच्चा, उसकी 1 या 1.5 साल नौकरी होगी, कहता साहब हम हमला करने आए हैं, आप आगे चलिए, मेरी परवाह मत करो, मैंने तो मर जाना है पर मैं अपना काम करता रहूंगा। उसने मेरे से बात की, अपना ट्रिगर दबाया, एक ग्रेनेड गया, मैंने पूछे मुड़कर देखा, he was dead.
इस अभियान के लिए मेजर रंजीत सिंह दयाल और ब्रिगेडियर सोरू बख्शी को महावीर चक्र दिया गया।
जैन दयाल पूरा देश का आर्मी का हीरो थे और मेरा पर्सनल हीरो है। वो हमारा टूआईसी थे, बाद में उन्होंने कमांड किया। वो एक कैरिस्मेटिक इंडिविजुअल था। उनका जो थिंकिंग है फार साइटेड है। उनका थिंकिंग ऐसा था कि लड़ाई होगा तो क्या होगा, कैसा होगा, इसके बाद क्या हो सकता है, ये सब चीजें को जोड़ के उन्होंने अपना तजवीज बनाते थे। और तजवीज को बनाना ही नहीं, उसको एग्जीक्यूट करना भी वो जानते थे, उसको कामयाबी तक ले जाना उनका काम था। ऐसा लीडर मैंने अब तक तो नहीं देखा और शायद हिंदुस्तान में भी इतना काबिल कमांडर नहीं मिलते। उनको MVC मिला तो ये मैं बोलता हूँ ये खुदकिस्मती है हमारी बटालियन की और फौज की।
सैनिक इतिहासकार फारूक बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान के लिए हाजी पीर का बहुत महत्व था क्योंकि युद्ध की स्थिति में यहीं से घाटी में पहुंच चुकी पाकिस्तानी सेना को रसद भेजी जानी थी और इस रास्ते के जरिए ही पाकिस्तान की जिब्राल्टर फोर्स के लोग भारतीय कश्मीर में घुसे थे। अल्ताफ कोहर ने अयूब पर लिखी अपनी किताब में लिखा है,
जैसे ही हाजी पीर पर भारतीय कब्जे की खबर पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल मूसा के पास पहुंची, वो भागते हुए विदेश मंत्री भुट्टो के घर गए और उन्हें नक्शा खोल कर दिखाया कि किस तरह जिब्राल्टर फोर्स कश्मीर में फंस कर रह गई है। उन्होंने भुट्टो से कहा, माय बॉयज हैव नथिंग बट स्टोन्स टू फाइट विद।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।
और कार्यक्रम के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन के देशों को प्रवासी संकट के समाधान के लिए नजरिया बदलकर साझा रणनीति के तहत 2 लाख शरणार्थियों को जगह देनी चाहिए। प्रवासियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन IOM ने कहा है कि लीबिया के तट पर एक बड़ी नौका डूबने के बाद लगभग 40 प्रवासी लापता हो गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि यमन में तैनात उसके 22 सैनिक मारे गए हैं। सीरिया में इस्लामिक स्टेट IS के जिहादी लड़ाकों ने प्राचीन शहर पलमायरा में पुरातात्विक महत्व की 3 इमारतों को ध्वस्त कर दिया है। भारत के दक्षिणी राज्य केरल के मुस्लिम विद्वान MM बशीर ने दावा किया है कि उन्हें हिंदू दक्षिणपंथी समूहों से धमकियां मिली हैं। BBC समाचार।
समाचार सुना रहे थे संदीप सोनी, स्टूडियो संभाला हेमंत कुशवाहा ने, मैं हूँ विनीत खरे। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी 9:30 बजे घटना चक्र में।